अध्याय तीन निराला विद्रोह और मुक्त छंद का प्रवाह। प्रसाद और निराला के बीच कुछ वैसा रिश्ता है जैसा इतिहास में परंपरा और विद्रोह के बीच होना चाहिए। निराला अपने लिए प्रसाद से भिन्न मार्ग चुनते हैं, पर यथावश्यक रूप में उन्हें सम्मान देते चलते हैं। 1936 के अपने एक पत्र में वरिष्ठ कवि प्रसाद को वो लिखते हैं व्यंग्य के पैनेपन का सही प्रयोग करते हुए, पर मैंने सुना है आप उपनिषदों से नीचे उतरना पसंद नहीं करते, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा यदि आपको नीचे उतार सकूं। यहाँ निराला के प्रयोग में उपनिषदों से अभिप्राय काव्य और दर्शन की उस परंपरा से है जिसके प्रति सीधा विद्रोह निराला को अभीष्ट है। हिंदी कविता की एक सहस्त्र वर्ष की परंपरा से अलग हटकर वे मुक्त छंद लिखते हैं जिसके स्वरूप की चर्चा आगे होगी। वह मन की बनाए शुद्ध घी की कचौड़ी को छोड़ वे तेल की गर्म पकौड़ी में रस लेते हैं और अभिजात कुल की रूपसी के बजाय उनका ध्यान काली कहारिन पर केंद्रित होता है। यह चतुर्मुखी विद्रोह प्रसाद से निराला का अलग स्वभाव है, व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों स्तर पर। प्रसाद और निराला के तुलनात्मक अध्ययन के प्रसंग में नंदलाले वाजपेयी का पर्यवेक्षण बहुत ठीक है। निराला और प्रसाद की इस तुलना का एक और आशय भी दिखाई देता है, यह न केवल दो कवियों की व्यक्तिगत तुलना है वरन एक प्रकार से 20वीं शताब्दी के संपूर्ण काव्य के शीर्ष अंश का समाकलन है। प्रसाद और निराला शीर्षक निबंध। छंद के संदर्भ में निराला का विद्रोह अधिक स्पष्ट और मुखर दिखता है। छंद विधान के अनेक पक्षों में निराला की रुचि आरंभ से रही। एक और उनकी चिंता थी कि उनके लिखे हुए खड़ी बोली के गीत सामान्य जन और कलावंतों के होठों पर वैसे ही बस जाएं जैसे अब तक ब्रजभाषा में रचे गए ख्याल के बोल और पदों की स्थिति रही है। दूसरी ओर पारंपरिक छंद को तोड़कर उसे नए ढंग से बनाने में उनका विशेष ध्यान रहा। मुक्त छंद को यहाँ उन्होंने जातीय मुक्ति के व्यापक संदर्भ से जोड़ा। तीसरी ओर छंद विधान के आंतरिक स्वरूप को नए नए ढंग से व्यवस्थित करने की उनके मन में तीव्र उत्सुकता थी। आधुनिक काल के आरंभ में कवियों ने वाक्य भंग के जरिए छंद को गति देने की महत्वपूर्ण कोशिश की, अर्थात वाक्य को तोड़कर उसके अलग अलग टुकड़ों को छंद की तरह अलग अलग पंक्तियों में बैठाया और संप्रेषण के हित में यूं एक तरह की नैयति व्यवस्था तैयार की। अंग्रेजी में इस शैली को एंजेमेंट कहा गया। समझने के लिए दो एक वाक्य उदाहरण के लिए दिए जा सकते हैं, पहले में अपना ही तथा दूसरे में छल छल पर बल द्रष्टव्य है। वह कल्याण कामना जो जगनक सभी की करता है, भक्ति मात्र के लिए नहीं है, दुख देख कर अपना ही। मत समझो सब दुखी जगत को, मत लांछन दो ईश्वर को। प्रेम पथिक प्रसाद। अन्याय जिधर है शक उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृगजल। राम को शक्ति पूजा निराला। निराला की दिलचस्पी इस नए ढंग के विधान में देखी जा सकती है। प्रसाद काव्य का एक आरंभिक विवेचन करते समय उन्होंने इस ओर ध्यान दिया। 1927 के एक पत्र में प्रसाद को उन्होंने लिखा, लिफाफे में पत्र लिखें और अपने उन पंक्तियों को जो पुरानी हैं छपने के सन संवत तारीख के साथ भेजें जिनके मध्य भाग में पूर्ण विराम आया है। आपको याद होगा मैंने आपको पसंद किया था, वे मेरे काम की हैं। यह जानना रोचक होगा कि कवि निराला के साथ साथ आलोचक रामचंद्र शुक्ल भी इस नए ढंग के यति विधान और परिणाम स्वरूप उत्पन्न छंद में उसके प्रवाह को लक्षित कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में नई धारा के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद का काव्य विवेचन आरंभ करते हुए खड़ी बोली के अतुकांत पद्यों का उल्लेख उन्होंने प्रसाद तथा पीछे श्रीधर पाठक के प्रसंग में किया है। निराला ने छंद विधान और उसमें यति तथा संगीत की व्यवस्था पर विस्तार से सुचिंतित ढंग से अपनी भूमिकाओं और स्वतंत्र निबंधों में विचार किया। स्पष्ट ही उनके दिलचस्पी इस प्रसंग में बौद्धिक से अधिक रचनात्मक प्रयोजनों के लिए है। निराला के कवि व्यक्तित्व के विकास में मुक्त छंद की विशिष्ट स्थिति का कारण यह भी है कि वे अपने काव्य जीवन का आरंभ जूही की कली से मानते हैं। समूचे हिंदी क्षेत्र में पहली बार मुक्त छंद में लिखी रचना है जिसका रचनाकाल उनके अनुसार 1916 है। रामविलास वर्मा ने निराला की साहित्य साधना के तीसरे खंड की भूमिका में इस कविता के लेखन काल पर विस्तार से विचार किया है और 1916 ईस्वी की तिथि को वे इस प्रसंग में स्वीकार नहीं करते। बहरहाल इतना अब मान्य है कि अतुकांत कविता भले किसी और ने पहले लिखी हो, अतुकांत मुक्त छंद की कविता हिंदी में निराला की पहली है जूही की कली। इसके पहले जो भी कुछ लिखा हो उसे उन्होंने लेखनीय प्रकाशन से बचाया। निराला का काव्य वैविध्य आधुनिक काल में अतुलनीय है, कुछ वैसे ही जैसे व्यापक स्तर पर उनके चरित्र नायक तुलसीदास का मध्यकाल में था। विमुक्त छंद के प्रणेता हैं, पर तुलसीदास में जैसे कठिन छंद और तुक विधान को उन्होंने साधा है वह अन्यतः दुर्लभ है। अपने काव्य विकास के अलग अलग चरणों में उन्होंने अलग अलग तरह के शब्द समूह का उपयोग किया। अनामिका, परिमल और गीतिका से लेकर प्रबंध काव्य तुलसीदास तक तत्सम प्रियता का दौर है। फिर आता है तद्भव का जमाना, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला और नए पत्ते में अंत में आते हैं अर्चना, आराधना और गीत गुंज के गीत, जहां आग्रह किसी और नहीं एक सहज देसीपन का आत्मविश्वास है। तत्सम तद्भव देसी जैसे उनके व्यक्तित्व की विकास यात्रा है। राम की शक्ति पूजा में अभिजात्य का वैभव है, शब्द समूह, छंद विधान और कथावस्तु के अभिजात्य का तो दूसरे सिरे पर है कुकुरमुत्ता, बिना किसी की चिंता किए हुए अपने आप से आप उपजा। शक्ति पूजा की सामान्य भाषा है ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जबकि कुकुरमुत्ता की भंगिमा है अबे सुन बे गुलाब। निराला के विकास क्रम को समझे बिना सहसा यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि दोनों कविताएं एक ही कवि की लिखी हुई है। काव्य रूप की दृष्टि से निराला के यहाँ प्रबंध है, हालांकि महाकाव्य नहीं, जो आधुनिक संदर्भों में बहुत कुछ एक बेडौल माध्यम हो गया है। फिर लंबी कविताएं हैं जो वस्तुतः आधुनिक युग में प्रबंधकी प्रतिरूप हैं और तरह तरह के गीत हैं, तत्सम तद्भव देसी सभी ठाठ के। निराला की एक बड़ी विशेषता यह है कि न केवल उन्होंने परंपरा से विद्रोह किया वरन स्वयं अपनी उपलब्धियों से भी, जिनसे कालांतर में परंपरा बन रही थी। उनके काव्य विकास के तीन चरण तत्सम तद्भव देसी कवि की बहुत कुछ इसी मनोवृत्ति को प्रतिफलित करते हैं। यह सतत विद्रोह भाव एक बड़ा कारण है निराला के काव्य वैविध्य का। जूही की कली से लेकर पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है तक एक लंबी काव्य यात्रा है, जिसमें कवि रास्ते के साथ साथ बराबर अपनी भी पहचान करता चलता है। निराला के ये सभी रूप अपने अपने ढंग से आकर्षक हैं, यद्यपि उनमें से कई एक दूसरे के प्रतिरोधी दिखाई देते हैं। ये काव्य स्तर परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया व निराला के कवि व्यक्तित्व की ओर और जीवन तथा गतिशील बनाए रखते हैं। हिंदी कविता के इतिहास में वैविध्य की यह काव्य प्रक्रिया अपने आप में अतुलनीय है। निराला ने मुक्त छंद रचना कर्म में किसी सुविधा के लिए नहीं रचा, वरन उसे अपने काव्य प्रवाह में गति लाने के लिए एक आवश्यक अवरोध के तौर पर देखा। कठिन छंद तो जैसा निराला ने तुलसीदास में लिखा है वैसा शायद हिंदी के किसी कवि ने अपने लिए चुना हो। छह पंक्तियों का छंद जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी की तीन चौथाई में तुक विधान और इसी तरह चौथी, पांचवी, छठी की तीन चौथाई में तुक, फिर तीसरी और छठी पंक्ति का अत्यानुप्रास अलग से, एक उदाहरण द्रष्टव्य है। कुछ समय अनंतर स्थिर रहकर स्वर्गीयाभा व स्वरित प्रखर सर में झरझर जीवन भर कर ज्यों बोली, अचपल ध्वनि की चमकीली चपला बल की महिमा बोली, अबला जागी जल पर कमला अमला मति डोली। रीतिकाल के दौरान गांव गांव में फैली हिंदी के जातीय छंद कवित्व को तोड़कर निराला ने उनकी लय का फिर से संधान किया और उसके विस्तार को अपनी आवश्यकता के अनुरूप पुनर्व्यवस्थित किया। इसके लिए छंद, लय और संगीत का उन्होंने पूरा अध्ययन किया, जैसा कि उनकी भूमिकाओं और लंबी लेखमाला पंत और पल्लव से प्रकट होता है। मुक्त छंद का प्रयोग उन्होंने मूलतः प्रवाह के लिए किया, इसका उल्लेख उन्होंने कई रूपों में किया है। यह प्रवाह तीव्रतर होता है अवरोध से, न कि अवरोध को हटाने से। इस रूप में मुक्त छंद का प्रयोग उन्होंने एक स्वतः निर्मित अवरोध के तौर पर किया। परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा, मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है। इस पुस्तक के तीसरे खंड में जितनी कविताएं हैं सब इस प्रकार की हैं। उनमें नियम कोई नहीं, केवल प्रवाह कवित्त छंद का सा जान पड़ता है, कहीं कहीं अक्षर आप ही आप आ जाते हैं। मुक्त छंद का समर्थक उसका प्रवाह ही है, वहीं से उसे छंद सिद्ध करता है और इसका नियम साहित्य उसकी मुक्ति। यहाँ विवेचन के अंत तक पहुँचते पहुँचते कवि ने मुक्त छंद की व्याख्या उसके द्वारा संभव प्रवाह के आधार पर ही की है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में निराला काव्य का विवेचन करते हुए उनकी पंक्तियों के आधार पर उनके मुक्त छंद का प्रयोग का उल्लेख इस प्रकार किया है। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर ही बहुत से लोग रबर छंद, कीचुआ छंद आदि कहने लगे थे। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश उन्होंने सबसे अधिक प्रगल्भ प्रेम नाम की कविता में अपने प्रिय सी कल्पना या कविता का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है, आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकच इस हृदय में कमल में आतू, प्रिय छोड़ कर बंधन में छंदों की छोटी राह, गज गामणी वह पथ तेरा संकीर्ण, कंटका किरण। आचार्य शुक्ल ने जिसे बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश कहा, वही वस्तुतः मुक्त छंद के प्रयोग में अंतर्निहित रचनात्मक स्तर पर बनाया हुआ अवरोध है जिससे कवि को टकराना है, आजमाइश करनी है और प्रवाह को अधिक गतिशील बनाना है। अपने इस रचना दर्शन को कवि ने तुलसीदास के कई छंदों में बड़ी युक्ति के साथ प्रतिपादित किया है। जहाँ केंद्रीय पंक्ति है स्वयं तुलसी के स्वगत कथन के रूप में, बंध के बिना कह कहाँ प्रगति, इस विलक्षण आजमाइश और प्रयोग में निराला पूरी तरह सफल हुए स्वयं उनका अपना और परवर्ती हिंदी काव्य जिसका प्रमाण है। और इस संदर्भ में फिर से याद दिलाना होगा कि निराला का छंदबद्ध काव्य उनके मुक्त छंद काव्य से कहीं हल्का नहीं पड़ता। निराला काव्य के पूरे विश्लेषण के बाद समीक्षकों का झुकाव दूसरे पक्ष की ओर शायद अधिक होगा। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास जैसी क्लासिकी पद्धति की रचनाएं जो निश्चय ही निराला उपलब्धियों के शिखर हैं, बड़े व्यवस्थित छंद विधान में लिखी गई हैं। फिर एक बड़ी संख्या छंदबद्ध गीतों की है। मुक्त छंद का प्रयोग नए विषयों के लिए अपेक्षाकृत अधिक हुआ है और यह मुक्त छंद की आजमाइश घूम कर उनके छंद विधान में और पूर्णता लाती है। अवरोध और प्रवाह के ढंग को निराला ने यहाँ बड़ी कुशलता से साधा है। इसी माने में निराला का विद्रोही कवि रूप पूरा सार्थक दिखाई देता है। निराला काव्य के वैविध्य की ओर पहले संकेत किया जा चुका है। यह एक विलक्षण बात है कि उसमें क्लासिकी, रोमांटिक तथा आधुनिक तत्व एक साथ दिखाई देते हैं। निराला में प्रसाद, निराला, आज्ञे तीनों घुले मिले हैं। मुक्त छंद और छंदबद्ध, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तत्सम तद्भव, देशी, प्रबंध गीत, मुक्तक, विधान, काव्यधार, भाषा और बंध के इन विविध स्तरों पर निराला समान क्षमता के साथ सक्रिय है। इतने स्तरों पर ऐसा वैविध्य अन्यत्र दुर्लभ है। इस वैविध्य को साधने के कारण है निराला बिना महाकाव्य लिखे हुए महाकवि हैं, जिस रूप में एक परवर्ती महत्वपूर्ण कवि ने अपने पहले संग्रह में उनका स्तवन किया। भूल कर जब राह भटका मैं, तुम ही झलके हे महाकवि, सघनतम की आंख बन मेरे लिए, निराला के प्रति शमशेर बहादुर सिंह। एक और निराला में जिधर देखिए श्याम विराजक की संपूर्ण निष्ठा है, दूसरी ओर आर्थिक सामाजिक क्रांति लाने की बेचैनी, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ। शक्ति पूजा में सीता के राममय नयन का जैसा कोमल स्मरण है, वैसी ही आत्मीयता के साथ वे किसान की नई बहू की आंखें भी अंकित हुई हैं। नयन और आंखें में तत्सम तद्भव शब्द ही नहीं, रूप की भी झलक मिलती है। फिर हमें जाना है जग के पार का उद्देश्य है, तो राजे ने अपनी रखवाली की जैसी कूटनीति की मीमांसा है। यहाँ राजा का विकृत रूप राजे व्याकरणिक दृष्टि से कुछ बहुत जरूरी न था। राजा शब्द का प्रयोग भी उपयुक्त था, पर राजे में एक तरह से तिरस्कार और व्यंग्य की झलक है जो राजा में नहीं है और जिसे उभारना निराला को अभीष्ट है। वैविध्य को समरस करने वाली भारतीय मनीषा का यह बड़ा सशक्त और ठेठ उदाहरण निराला का काव्य प्रस्तुत करता है। छायावाद के समुचे परिदृश्य का सबसे बड़ा विद्रोही के रूप में निराला की सही ख्याति है। दूसरी ओर अपने समकालीनों द्वारा तिरस्कृत ब्रजभाषा और रतिकाल की परंपरा के साथ उनका लगाव सबसे गहरा है। छायावाद के उदय के साथ एतिगाल की भूमिका क्या रही है, यह अध्ययन अपने आप में बड़ा रोचक और रचनात्मक क्रम विकास को समझने में अत्यंत सहायक है। यह ठीक है कि आधुनिक काल के आरंभिक विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके सहयोगी लेखकों ने रीतिकालीन प्रवृत्तियों का जमकर विरोध किया। रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में रीतिवाद विरोधी अभियान के अंतर्गत इस स्थिति का अच्छा विश्लेषण किया है। अपने काव्य संकलन पल्लव की भूमिका में छायावाद का बचाव करते हुए सुमिता नंदन पंत ने भी रीतिकालीन कवियों पर तीखे व्यंग किए हैं। इस पर स्वयं छायावादी कवियों ने अपने ढंग से रीतिकालीन प्रवृत्तियों को मान्यता भी दी, वैसे ही जैसे पितामह की प्रवृत्तियां कई बार पुत्र में नहीं पौत्र में झलक मारती है। पंत ने यदि रीतिकाल का विरोध सबसे अधिक किया तो रीतिकाल का रचनात्मक उपयोग सबसे अधिक किया निराला ने। दोनों के आरंभिक कवि जीवन का एक पद्यबद्ध पत्र व्यवहार दोनों कवियों को जीवन प्रसंग में उद्धृत मिलता है। 1931 ईस्वी के इस पत्र व्यवहार में तत्कालीन काव्यधारा का नेतृत्व करने को उत्सुक युवा कवियों का परस्पर प्रेम और राग द्वेष एक साथ प्रकट होता है। ऐसे स्थिति में दोनों कवियों ने व्यंग्य की शैली अपनाई है और इसके लिए पंत ने काव्य भाषा चुनी ब्रज। क्षमहो बंधु अपराध रूसन की बहुबान तुम्हें पाए हमें मनावन साध, जबकि निराला ने उत्तर दिया बंगला में बांधु है भालोभाषी भालो बासी आक्षो नूतन किछोई करुणाई आभि माने माने जिपिछाई द्वारे तुम्हें आसुई अक्षताई। अपनी रचना प्रक्रिया में पंत यदि ब्रजभाषा के माध्यम से परंपरा के प्रति अगंभीर भाव प्रकट कर रहे हैं तो निराला बंगला के माध्यम से बाह्य अभिजात प्रभाव के प्रति। उल्लेखनीय है कि निराला ब्रज और बंगला दोनों का रचनात्मक उपयोग करने में सफल हो सके, पर व्यंग्य का लक्ष्य उन्होंने परंपरा को नहीं प्रभाव को बनाया। निराला का ब्रजभाषा कवित्व छंद और रीतिकाल के प्रति झुकाव कई रूपों में देखने को मिलता है। पल्लव की भूमिका में ब्रजभाषा और रीतिकाल पर पंत के आक्रमण का जवाब निराला देते हैं। पंत और पल्लव में और इससे अधिक स्वयं अपनी काव्य प्रक्रिया द्वारा पंत और पल्लव के कुछ वक्तव्य इस प्रकार ध्यान देने योग्य हैं। कवित्व छंद हिंदी का चूंकि जातीय छंद है, इसलिए जातीय मुक्त छंद की सृष्टि भी कवित्व छंद की गति के अनुकूल हुई है। पश्चिमी भाषाओं में फ्रेंच की विजय और स्पर्धा इसीलिए है, संस्कृत में भी इसके चढ़ाव से श्री भरी हुई है। उधर ब्रजभाषा में अपनी क्रियाओं के रूपों में व्यथेष्ट श्रुति कोमलता ला दिखलाई है। बात यह है कि आज किसी प्रांतीय भाषा के साथ अपने हृदय को पूर्णता और उज्ज्वल उत्कर्ष पर विश्वास रखकर वार्तालाप करने की शक्ति हिंदी के प्रचलित दो रूपों में यदि किसी भी है तो ब्रजभाषा में। निराला काव्य के संदर्भ में यह संयोग से कुछ अधिक है कि हिंदी में मुक्त छंद की पहली कविता जूही की कली अपनी समुचित श्रृंगार परिकल्पना में रीतिकालीन चित्रण से जुड़ी हुई है। ऐसी ब्रजभाषा परंपरा में निराला ने होली लिखी। नयनों के डोरे लाल गुलाल भरे खेली होली, जागी रात सेज पिय पतिसंग रति स्नेह रंग घोली, दीपित दीप प्रकाश कुंज छवि पंज बंजु हंस बोली, मलि मुख चुम्बन रोली। रीतिकालीन श्रृंगार का यह नया ठाट छायावाद के कवि ने बांधा है। इसके लिए जैसा रचनात्मक आत्मविश्वास चाहिए था वह निराला में था। फिर निराला के भक्ति और विनय के गीत हैं जो उनके रचनाकाल के एकदम आरंभ से एकदम अंत तक चलते रहते हैं। आरंभिक दौर की कुछ रचनाएं हैं दे मैं करूं वरण जननी दुख हरण पद राग रंजित मरण, अनगिनत आ गए शरण में जन जननी पावन करूं नयन वर दे बुढ़ा वादनी वर दे भारती जय विजय करे, प्रात तव द्वार पर आया जननी नय छंद पात पथ पार कर। इन गीतों के अतिरिक्त राम की शक्ति पूजा में कई स्थलों पर अत्यंत मार्मिक दुर्गा स्तवन है। द्वितीय चरण में विनय गीत कम है, दलित जन पर करो करुणा इस कोटि में आता है। तृतीय चरण का श्रेष्ठतम कृतित्व भक्ति और प्रणति के गीतों में दशब्द है। इन गीतों की संख्या भी इस अवधि में सबसे अधिक है, कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। वरद हुई शारदा जी हमारी इधर देखिए श्याम विराजे, नील जलधि जल नील कराभ भग्न तन रुग्ण मन जीवन विषण वन मरा हूँ हजार मरण, पाई तव चरण शरण। हे जननी तुम तपश्चरिता, माँ अपने आलोक निखारो। दुर्दीर करो नाथ अशरण हूँ गहो हाथ, भजन कर हरि के चरण मन। अशरण शरण राम काम के छविधाम। भक्ति और विनय के ये गीत माँ शारदा, दुर्गा, लक्ष्मी, शंकर, कृष्ण और राम को संबोधित हैं। यदि इनको एकत्र व्यवस्थित कर दिया जाए तो निराला के संपूर्ण विनय पत्रिका बन जाएगी। यहाँ भी हिंदी के संतों और भक्तों की नामावली को संबद्ध करते दिखते हैं। इस प्रसंग में स्मरणीय है कि उपर्युक्त दोनों प्रसंगों में उद्धृत रचनाएँ राम विलास शर्मा द्वारा संपादित संग्रह राग विराग से ली गई हैं। निराला के इस आस्तिक हिंदू मनस की अपेक्षा करके उनके कृतित्व को नहीं समझा जा सकता। प्रख्यात जीवनीकार और आलोचक राम विलास शर्मा के दृष्टिकोण में यह कमी उन्हें निराला के आसपास रखती है, उन तक पहुँचने नहीं देती। निराला ने स्वयं जैसे प्रमुख राम भक्त कवि तुलसी की रचना प्रक्रिया में प्रेम और भक्ति के संपृक्त भूमिका का विश्लेषण किया है। अपने तुलसीदास काव्य में कुछ वैसा ही सूत्र हो सकता है निराला को समझने पर उनकी आलोचना में। जागो फिर एक बार तथा छत्रपति शिवाजी का पत्र ऐसी लंबी कविताओं का वीर और पौरुष भाव रीतिकाल और भक्तिकाल के पहले की वीर काव्य परंपरा से जुड़ता है। पंत और पल्लव में निराला ने लिखा था, हिंदी की मधुरता को एक साथ विशेषण ओज की भी जरूरत है। कानानों का स्वयं निराला काव्य इन दोनों गुणों से भरपूर है। ओज तो जैसे उनका संवादी स्वर है, यूँ समूची हिंदी काव्य परंपरा निराला के कृतित्व में जागृत हो उठी है, उनके व्यक्तित्व से प्रदीप्त होकर। जहाँ प्रयोग सबसे अधिक निर्भीक है परंपरा के प्रति, वहाँ सबसे अधिक गहरी निष्ठा भी है। इस समूची प्रक्रिया का एक नाम है निराला। प्रसाद की कामायनी अपने वर्णनों से नहीं वृत्ति से महाकाव्य है। निराला ने प्रबंध के क्रम में राम की शक्ति पूजा उसी समय लिखी जो महाकाव्य चित्त और दात्त से संपन्न लंबी कविता है। यह आधुनिक काल में महाकाव्य का उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता विधान है। पुराण कथा, प्रतीकात्मकता और आधुनिक संवेदना के कई स्तरों पर कविता एक साथ प्रवाहित होती है। छायावाद को शक्ति काव्य कहने में कामायनी के साथ राम की शक्ति पूजा मिलकर मुख्य धारा आधार बनती है। सर्गबद्ध प्रबंध कामायनी में भाषा के कुछ भूलें मिल जाती हैं, शैलीगत शिथिलताएँ भी। पूरी रचना इन खामियों का अतिक्रमण कर जाती है वह अलग बात है। राम की शक्ति पूजा का विधान इस तुलना में एकदम निर्दोष है। एक एक शब्द सुचिंतित जैसे जुड़ा हुआ है। फिर स्थान स्थान पर नाटकीय मोड़ कविता के विन्यास में एक रास्ता नहीं आने देते। महाकाव्य की उदात्तता और नाटक की गति, ये दोनों मिलकर इस लंबी कविता को एक अपूर्व रूप प्रदान करते हैं। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृत्तिवास की बंगला रामायण से लिया गया है। इस कहने का कुछ अर्थ नहीं, या कि उतना ही अर्थ है जितना यह कहने का कि तुलसी ने अपने रामचरितमानस की विविध अंश अपने से पहले प्रचलित रामायणों तथा अन्य ग्रंथों से लिए हैं। मौलिकता कथानक में नहीं है, उस कथानक से सृजा किया गया है उसमें है। इस दृष्टि से शक्ति पूजा में शक्ति संधान की रचनात्मक व्याख्या है और इसका मूल सूत्र उस परामर्श में है जो जाम्बवान पराजय की बनाई स्थिति में डूबे राम को देते हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, अर्थात शक्ति का संधान मौलिक रूप में ही संभव है, अनुकरणात्मक रूप में नहीं। रामायणी के मनु और शक्ति पूजा के राम की हताश बनाई स्थिति एक जैसी है, जो इन रचनाकारों की समकालीन राष्ट्रीय पराधीन दशा से तुलनीय है। यह मनु और राम की उक्तियों में बार बार उभरती है। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे कामायनी। बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर, शक्ति पूजा। तब दोनों स्थितियों में संधान की दिशा एक जैसी है। श्रद्धा मनु को समझाती है शक्तिशाली हो विजयी बनो, और जाम भगवान का परामर्श है शक्ति की करो मौलिक कल्पना। समकालीन परिदृश्य पर स्वदेशी आंदोलन जैसे इस मौलिकता के विकास का व्यवहारिक उपक्रम हो, अतीत वर्तमान और भविष्य यहाँ अनुभव प्रक्रिया में एक साथ मिल गए हैं। द्विवेदी युग की इतिवृत्ता प्रधान कवि मैथिलेश्वर गुप्त को जिसके लिए अपने राष्ट्रीय काव्य भारत भारती में तीन अलग अलग खंडों की नियोजना करनी पड़ी थी। रचना विधान काल प्रभाव को कैसे साधता और संभालता है, इसका अंतर इन दो पीढ़ी के कवियों में यहाँ अच्छी तरह देखा जा सकता है। राम की शक्ति पूजा हर दृष्टि से निराला की शीर्ष रचना कही जाएगी। परिकल्पना की विराटता और चित्रण की सूक्ष्मता का संयोजन कामायनी की ही तरह राम की शक्ति पूजा के विधान की विशेषता है। राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। सामान्य मनुष्य की तरह वे भी विषम परिस्थिति में दुखी और निराश होते हैं और उनकी आँखों से आंसू गिर पड़ते हैं। रावण ने अपनी कठोर आराधना से शिव की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया है, जिसके समक्ष राम का सारा पुरुषार्थ और रण कौशल व्यर्थ हो जाता है। तो वे एक सामान्य संवेदनशील व्यक्ति की तरह सोचते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूद पुनः ढलके दीर्घ जल। इस कठिन परिस्थिति का जब राम को पहली बार एहसास होता है, तब तो उनकी उतनी ही मार्मिक और कोमल स्मृति उनके मन में कौंधती है। प्रसंग है राम और सीता का प्रथम मिलन जनक की उपवन में। ऐसे क्षण अंधकार घर में जैसे विद्युत जागे पृथ्वी, तनया कुमारिका छवि अच्युत। जीवन के चरम अंधकार के क्षण में सर्वाधिक आलोक के समय को स्मरण करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जितना उपयुक्त है, काव्य में रचना प्रक्रिया के दृष्टि से उतना ही कठिन। ऐसे ही दृश्य की पुनरावृत्ति तब होती है जब राम आराधना करते समय दुर्गा के चौड़ों में अंतिम कमल चढ़ाने को उद्यत होते हैं और वह उन्हें नहीं मिलता। यहाँ दूसरे बड़े प्रयत्न की असफलता उनके सामने आती है और वे सोचते हैं, दिक् जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। हताशा की मनस्थिति में इस बार उन्होंने अपनी माँ का स्मरण रवाता है, यह है उपाय। खा उठे राम जो मंदृत घन, कहती थी माँ माता मुझे सदा राह जीवनयन। पहले दृश्य में जहाँ प्रिया के दर्शन का उल्लास है, वहाँ इस दूसरे प्रसंग में माँ के संरक्षण भाव का आश्वासन है। वर्तमान की नितांत कठोरता के संदर्भ में दोनों स्मरण अत्यंत कोमल और करुण है। यह विरुद्धों का सामंजस्य निराला काव्य की अंतर्वर्ती वस्तु है। पहले स्मरणालोक का वर्तमान से कैसे अवसंभ है, यह ध्यान देना योग्य है। वर्तमान स्थिति का चित्रण इस प्रकार है, हाय अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। और ऐसे अंधेरे संदर्भ में राम को जानकी की कुमारी छवि का स्मरण हो आता है, जिसका चित्रण कवि ने एकदम भिन्न शब्दावली और ध्वन्यात्मक वातावरण के अंतर्गत किया है। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खगन जीवन परिचय, तरुण मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय, ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमलीय, प्रथम कंपन तुरीय। जानकी की सौंदर्य के लिए ज्योति प्रपात बिंब मानो समस्त प्रणयालोक को एक साथ मूर्तिमान कर देता है। पर कुछ क्षण बाद राम की तंद्रा भंग हो जाती है और वे वर्तमान के कठोर यथार्थ से टकराते हैं। इस वन स्थिति पे कवि ने एक बड़ी ही सुकुमार चित्र उकेरा है। अपने को फिर शक्ति के अन्याय के समक्ष पाकर राम वंदने सीता के नेत्रों के बारे में सोचने लगते हैं। लक शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगो में सीता के राममय नयन। राम सीता के उन नेत्रों को देख रहे हैं जिनमें राम की ही छवि अंकित है। आमने सामने समानांतर दर्पणों की तरह अनंत छवियां और प्रतिछवियां भरती चली जाती हैं, सौंदर्य और करुणा को एक दूसरे में लपेटते हुए। निराला का संपूर्ण काव्य व्यक्तित्व विरुद्धों का सामंजस्य की उस अवधारणा में से जैसे विकसित हुआ है, जिसे कवि के समकालीन और प्रसिद्ध समीक्षक रामचंद्र शुक्ल ने आनंद की साधना अवस्था की उच्चतम रचना भूमि का कारक तत्व स्वीकार किया है। ऐसा पहले विवेचित किया जा चुका है, निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं और सबसे कठिन छंद तथा तुक विधान का पालन करते हैं। एक ओर राम को शक्ति पूजा तथा उनके गीतों में तत्सम शब्दावली का आग्रह है, तो दूसरी ओर गुकुर्मत्ता में अभी सुनबे गुलाब की ठेस देसी भंगिमा है। श्रृंगार गीतों में प्रणय की उद्दाम स्थितियों का उन्मुक्त अंकन है, जैसा प्रसाद के आंसू और लहर गीतों में भी नहीं मिलेगा। तो फिर तुमसे लाग लागू जो मन की, जगकी हुई वासना बासी का मार्मिक उद्घेष है। स्मरणीय की छायावाद की किसी कवि ने भक्ति गीतों की ऐसी श्रृंखला नहीं लिखी जैसी निराला ने आदि से अंत तक लिखी है। अपने जीवन और रचना कर्म से वे मूलतः विद्रोही होने के बावजूद उनके प्रिय कवि हैं कठोर मर्यादावादी कवि तुलसीदास। निराला की तुलना ऊपरी तौर पर अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन से की जाती है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने साहित्य मुक्त छंद का आरंभ किया, व्हिटमैन ने पहले निराला ने बाद में। पर निराला के व्यक्तित्व में इन कई तरह के विरोधों का गहराई में सह अस्तित्व देखकर व्हिटमैन की पंक्तियां यहां सार्थक भाव से स्मरण हो आती हैं। क्या कहा, मैं अपना खंडन करता हूँ? ठीक है, तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। निराला ने कहीं ऐसा घोषित नहीं किया, पर उनका काव्य स्वयं इसका अनेक स्तरीय प्रमाण है। रामचंद्र शुक्ल ने विरोधों का सामंजस्य का जो सिद्धांत आलोचना में प्रतिपादित किया, निराला उसका रचनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। सरोज स्मृति कई अर्थों में राम की शक्ति पूजा की पूरक कृति है। दोनों की रचना प्राय साथ साथ हुई है, 1935 और 36 में। शक्ति पूजा का संघर्ष व्यापक धरातल पर है, सरोज स्मृति का संघर्ष घोषित रूप से वैयक्तिक स्तर पर। यह कवि की इकलौती बेटी की असामयिक मृत्यु पर लिखा गया शोक काव्य है। हिंदी में तो अपने ढंग का अकेला ही। मझोले आकार की इस कविता में रचनाकार ने शोक निमग्न पिता के विविध मन स्थितियों को अंकित किया है। नीति श्रृंगार और अंत के विराग भाव के बीच बीच में करुणा की अंतर्वर्ती धारा बराबर प्रवाहित होती रही है। मनुष्य जीवन के संपूर्ण भर्तृहरि क्रम को जैसे सांकेतिक रूप में व्यक्त कर दिया गया हो। कविता में मन स्थितियों का वैविध्य अनिवार्य रूप से ध्वन्यात्मक और बिंबपरक वैविध्य से जुड़ा हुआ है। मूलतः करुण भावधारा से युक्त शोक काव्य में शिव की महाराज जैसे अटपटे और हास्यमूलक प्रसंगों को निक्षिप्त करना काव्य प्रक्रिया के कठिनतम चरणों में से है। सरोज के विवाह के लिए उपयुक्त वर की तलाश चल रही है, इसी क्रम में एक पात्र का वर्णन है। वे जो यमुना के से कछार पद फटे विवाही कई उधार, खाए के मुँह जो पिए तेल, चमरौधे जूते से सकेर, निकले जीत लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूछू ऐसी नहीं शक्ति। वाक्य भंग के द्वारा एक एक वर्णन को और मूर्तिमान कर दिया गया है। वैषम्य सरोज के सौंदर्य को स्मरण करके और उभरता है। बेटी के सौंदर्य और रति प्रसंग पर माँ की मुग्धता का वर्णन पिछले कुछ कवियों ने किया है। जायसी का चित्रण स्मरणीय है। पदावली पद्मावती रत्नसेन भेंट खंड के अंतर्गत प्रातः समय पद्मावती को देखकर उसकी माँ की प्रतिक्रिया वर्णित हुई है। कुसुम फूल चस मर्दय निरग देख सब अंग, चंपावती भई वारी चूम केश और मंग। और सरोज की माँ नहीं है, माँ के दायित्व का पालन पिता ने ही किया है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। इस सरोज के यवनागम का वर्णन निराला ने जैसे सदी हाथों पहल किया है, वह किसी भी युग में अतुलनीय है। अपने लिए द्वितीय विवाह के प्रस्ताव को देख कवि असमंजस में है। उसे उभरने के लिए कवि अपने जन्म कुंडली का कागज सरोज को खेलने को दे देता है, जिसे वह सहज टुकड़े टुकड़े करके फाड़ देती है। इस बाल्यावस्था के बाद सरोज यौवन में प्रवेश करती है। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल की गेलियों का पर अंगड़, कर पार कुंज तारुण्य सुगर, आई लामण भार थर थर, कांपा कोमलता का सस्वर, ज्यों माल कोश नव वीणा पर, क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, ज्यों भोगवती उठी अपार, उमड़ता उर्द को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों से साध साध। भोगवती परंपरा के अनुसार पाताल की नदी है, ऊपर की ओर उमड़ती हुई। अपने अंतर्निहित श्लेष के कारण इस बिंब को ताजगी और उद्दाम वृत्ति सरोज की युवावस्था के आवेग से एकमेक हो जाती है। सरोज के इस रूप चित्रण के साथ जो एक देहाती कान्यकुब्जर का अंकन कवि ने आगे किया है, वह दोनों चित्रों के विरोध को और पैना कर देता है। स्वभावतः अपने बेटी के लिए निराला ऐसा वर स्वीकार नहीं कर सकते। जब रूढ़ियों से मुक्त एक उपयुक्त वर मिलता है तो विवाह का आयोजन होता है। मंडप में बैठी सरोज का चित्र कवि ने खींचा है। देखा मैंने वह मूर्ति धीत, मेरे बसंत की प्रथम गीत, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्विस धार, गाया स्वर्गीया प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, प्रतिरूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। प्रिया का संक्रमण जैसे चुपचाप पुत्री में हो जाता है, इसका बड़ा सुकुमार अंकन कवि ने यहाँ किया है। अगली प्रबंध रचना तुलसीदास में यह संक्रमण एक भिन्न रूप में होता है। प्रिया रत्नावली का माता शारदा में। रविंद्रनाथ ने श्रम शीर्षक की अपनी प्रसिद्ध कविता में उर्वशी का नारे चित्रण निसंग और निरपेक्ष रूप में किया है, जो न माता है न कन्या है और न वधु, जो केवल सुंदर है। निराला का चित्रण न अधिक कठिन धरातल पर है, जहाँ नारी के विविध रूप विशिष्ट मानव स्थितियों के बीच एक दूसरे में संक्रमित होकर समरस हो जाते हैं। जैसे लौकिक और अलौकिक प्रेम छायावादी कवियों के यहाँ परस्पर विलीन हुए हैं, वैसे ही तथाकथित लौकिक प्रेम के विविध रूप और इनके संगम में प्रेम का महाभाव विकसित होता है। प्रिया के साथ गाया सूक्ष्म गीत जो आकाश की तरह था, बेटी के रूप में मानव धरती हो गया है। भोगवती और धरती की ये बिंब नारी की विविध रूपों की गहरी व्यंजना देते हैं। कविता फिर धीरे धीरे ट्रेजिक निष्पत्ति की ओर बढ़ती है। एक स्थिति में लगने लगता है इससे भिन्न उसके नियति नहीं। सौंदर्य है तो नश्वरता अनिवार्य है, नश्वरता के बिना सौंदर्य की परिकल्पना संभव नहीं। कई वर्ष बाद सरोज का जीवन समाप्त हो जाता है। इस खंड में पहुंचकर कवि ने अपना इतिवृत्त अत्यंत संक्षिप्त कर दिया है। फिर आती है निराला की दो प्रसिद्ध पंक्तियाँ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, जिनमें पूरे जीवन का संघर्ष गूंजने लगता है। कहीं ट्रेजेडी से अनकही और मार्मिक हो उठती है, शक्ति पूजा की राम की आत्मग्लानी याद हो आती है। दिख जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। दोनों कविताओं का अंत अलग अलग रूप में कवि ने बड़ी कुशलता से रचा है। शक्ति पूजा में व्यापक मानवीय संघर्ष की वस्तु है, अतः उसका समापन जय के पूरे आश्वासन में होता है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, पर सरोज स्मृति में वैयक्तिक पीड़ा प्रधान है, इसलिए कवि ने उसे अंततः तर्पण के रूप में माना है अपने अश्रु जल के साथ। कन्य गत कर्मों का अर्पण, करता मैं तेरा तर्पण। एक मानवीय नियति की कथा है तो दूसरी भाग्यहीन की कथा। तुलसीदास का प्रबंध और व्यापक पृष्ठभूमि पर रचा गया है। यहाँ देश के सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का प्रश्न हिंदी के सशस्त्र कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से उठाया गया है। चरित्र नायक के संदर्भ में रचना का तात्कालिक परिवेश मुगल काल है, पर एक भिन्न अर्थ स्तर पर कविता आधुनिक काल में अंग्रेजों की दासता के काल में प्रक्षिप्त दिखती है। जहाँ तुलसी की भूमिका में जैसे निराला स्वयं अपने को परिकल्पित कर रहे हों, यहाँ कवि दिखाता है कि राजनीतिक पराधीनता तो अपने में कष्टदायक है ही, पर उससे अधिक गहरे तल पर खोखला करने वाली सांस्कृतिक दास्ता है और इसकी पहचान कहीं अधिक मुश्किल होती है। पुनर्जागरण के संदर्भ में निराला ने तुलसीदास के माध्यम से बुनियादी प्रश्न यह उठाया है कि अंग्रेजों से हमारी सांस्कृतिक टकराहट है या कि हम उनकी सांस्कृतिक दास्ता को स्वीकार करते हैं। सांस्कृतिक दास्ता का बड़ा सुंदर पर वैसा ही करुण चित्र कवि ने मुगल शासन के अंतर्गत खींचा है। भूला दुख अब सुख सरित जाल, फैलाया केवल कल्प काल, कामिनी कुमुद कर कलित ताल पर चलता, प्राणों की छवि मृदमंद स्पंद, लघुगति नियमित पद ललित छंद, होगा कोई जो निरानंद कर मलता। यह अकबर महान के समय के स्थिर अमन चैन का वर्णन है, पर इस सुख शांति के भीतर गहराती हुई सांस्कृतिक दास्ता तुलसी के मन को सालती है। हिंदू संस्कृति का सूर्य डूब चुका है, इस्लाम की चांदनी चारों ओर छिटकी हुई है। जिस वातावरण में देश का जीवन क्रम कैसा चलता है, इसका चित्रण कवि ने ऊपर के छंद में किया है। जातीय मानस लहरों में फूल की तरह अवश्य बह रहा है, इसका इसकी कोई जड़ें नहीं है। ज्यों इस प्रवाह में देश मूल खो बहता में समूची सांस्कृतिक निश्चितता का सटीक वर्णन है। जहाँ ऊपर से देखने पर गति है, पर जो है एकदम सतह पर। इस संदर्भ में देश की सांस्कृतिक अस्मिता की चुनौती तुलसीदास के सामने उभर कर आती है, पर यह ज्ञान ऐसा सीधा सरल नहीं है। तुलसी की पहली आसक्ति एक सहज गृहस्थ के रूप में अपनी पत्नी रत्नावली से है। उनके मायके आने पर वे पीछे पीछे साथ चले आते हैं। यहाँ कवि ने लोक में प्रचलित तुलसी रत्नावली वृत्तांत को उठाया है, पर इसमें व्याख्या की चमक उनकी अपनी है। हो सकता है कि व्यक्तिगत संदर्भों से तुलसी के वृत्त का यह पक्ष कवि निराला को अपने अनुकूल लगा हो। तुलसी के इस आचरण से रत्नावली अपने पितृगृह में लज्जित अनुभव करती है और बिजली की तरह तड़पती और कहती है, धिक धाय तुम यो अनाहूत, यो दिया शिष्ट कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। और तब तुलसी को रत्नावली में शारदा के दर्शन होते हैं। फिर नटराज के लोक में पहुँच कर जैसे कामायनी को मनो को आनंद की अनुभूति होती है, कुछ वैसे ही शारदा के साक्षात्कार से तुलसी को आनंद रहा, मिट गए द्वंद बंधन सब। तब उन्हें आसुर भावों से भुने ऋषि क्षेत्र की पीड़ा समझ में आती है और यहीं से सांस्कृतिक संघर्ष की कथा वस्तु उनके मन में घूमने लगती है। फिर संघर्ष के दोनों पक्ष उनके सामने आते हैं। भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। काव्य के ऊंचे धरातल पर सांस्कृतियों जीवन मूल्यों का संघर्ष कृतियों का प्रमुख उपजीव्य बनता है। तुलसी के रामचरितमानस की यही वस्तु है। निराला के तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा की भी कामायनी में तो कथा और वस्तु दोनों का विधान इसी रूप में हुआ है। पहले देव और असुर संस्कृतियों का संघर्ष है जिसका चित्रण वहाँ ईड़ा सर्ग में प्रधानतः हुआ है। फिर देव और असुरों की सम्मिलित संस्कृति से टकराहट कर मानवीय संस्कृति विकसित होती है जो नश्वर है, पर अपनी नश्वरता में ही सृजनात्मक और प्रेम की क्षमता को आविष्कृत करती है। पुनर्जागरण युग में यह सांस्कृतिक संघर्ष की वस्तु अर्थ के स्तर पर और संचरणशील हो जाती है। अब टकराहट भारतीय और पाश्चात्य संस्कृतियों के बीच है। रचना शक्ति की जय भारती और तुलसी और दुर्गा जिसकी अधिष्ठात्री हैं में कवि की गहरी आस्था। भारती और दुर्गा निराला के लिए न सिर्फ हिंदू देव माला के सदस्य हैं और न सिर्फ पुराण कथा या के प्रतीक, वे अर्थ की दृष्टि से इन सभी स्तरों पर संचरणशील है जो इस क्रिया प्रतिक्रिया में विराट से विराटतर होता है। यही कारण है कि शक्ति पूजा के दुर्गा स्वयं राम के बदन में लीन हो जाती है और तुलसीदास के शारदा या भारती रत्नावली में प्रकट होती है और वहीं लीन भी होती है। इस आलोक में जैसे तुलसी अपने मानस की रचना करते हैं, निराला अपने नए ढंग के प्रबंध विधान में जैसे सफल हुए हैं गीतों में उससे कहीं कम नहीं। तुलसी में रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसे कवि के अभिव्यक्ति के दोनों सबल पक्ष हैं, वैसे ही निराला में शक्ति पूजा सरोज स्मृति और तुलसीदास यदि एक ओर हैं तो विविध भाव स्तरों और भाषिक विधान में रचे गए गीत दूसरी ओर। गीत के विधान को लेकर कई बार संदेह किया जाता है कि जटिल और संश्लिष्ट अनुभूतियों की अभिव्यक्ति उनके संक्षिप्त और सीधे रूप में कैसे संभव है, जहाँ देखा जा सकता है कि मध्यकालीन पदों का सीधा साधा विधान छायावादी कवियों विशेषतः निराला ने अपने गीतों के लिए स्वीकार नहीं किया। पुराने पदों में आरंभ में टेक है, फिर बाद में एक ही बंधे आकार की अंत्यानुप्रास युक्त पंक्तियाँ हैं। कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई से लेकर भारतेंदु तक के पद इस शैली का अनुसरण करते हैं। प्रसाद और निराला के गीतों में बहुत तरह की विविधता है। टेक का होना अनिवार्य नहीं, पंक्तियों का आकार छोटा बड़ा होता रहता है। तुक विधान में कोई निश्चित समरूपता नहीं, फिर गीत के आंतरिक विन्यास में वाक्य भंग का प्रयोग करके इच्छित स्थलों पर बल दे दिया जाता है। निराला के गीत कहीं कहीं बहुत संक्षिप्त हैं, फिर भी उनमें जीवन की समग्र अनुभूति समाई हुई है। इस विधान के कुछ कारकों का तो अभी उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त अनुभूति के द्वंद्वात्मक रूप को गीत में विकसित करके कवि अर्थ विस्तार संभव करता है और जीवन की समग्रता को पकड़ना चाहता है। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध गीत लिया जा सकता है, इसने निर्झर बह गया है। 17 पंक्तियों की इस रचना में आरंभ के दो तुक सहित पंक्तियों के साथ 3 छंद हैं, जिनमें से प्रत्येक में पहली 3 पंक्तियाँ एक आकार की हैं, बाद की 2 पंक्तियाँ भिन्न आकार की। वाक्य भंग का प्रयोग कई स्थलों पर है। कह रही है, अब यहाँ पिकी आशिकी नहीं आते, पंक्ति में वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। यूँ रूप विधान के कई युक्तियों से पूरी कविता को एक रस्ता के प्रतीति से बचाया गया है। अनुभूति के धरातल पर कवि ने द्वंद्व विकसित किया है, विषाद और तोष के परस्पर विरोधी पक्षों को एक साथ जोड़कर। कविता का पहला और मुख्य पंक्ति क्रम स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, विषाद के गहरे भाव को व्यक्त करता है। पहला छंद फिर पूरे का पूरा उसी भावभूमि में है। दूसरे छंद में कवि की भावना जैसे करवट लेती है और वह कहता है, दिए है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर या सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। पहले जितना गहरा विषाद था, यहाँ उतना ही गहरा आत्मतोष है। कभी रचना क्षण की अनश्वरता पर बल देता है, ऊपर का शारीरिक ठाठ भले टीढ़ा पड़ गया हो, अब विषाद और आत्मतोष के इस अंतर प्रक्रिया में जैसे जीवन का समग्र रूप झंकृत हो उठता है, समग्रता को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। विषाद और आत्मतोष के द्वंद्व से गुजर कर कभी तीसरी और अंतिम छंद में एक प्रशमित मन स्थिति में पहुंचता है। व्यावहारिक जीवन की सभी निराशा के बावजूद कवि को आश्वासन है कि वह अपनी रचना में जीवित है और रहेगा। मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। और इसी बिंदु पर गीत का समापन होता है, कुल 17 पंक्तियों में एक संपूर्ण रचना जीवन का चित्रण करके। निराला के गीत विविध मन स्थितियों का अंकन करते हैं, ऋतु गीत और प्रार्थना गीत हैं, उद्दाम श्रृंगार और गहरी करुणा के, और सहज उल्लास तथा ओज के। स्फुट कविताओं में भी ऐसे ही वैविध्य पर लक्षित किया जा सकता है। अंतिम चरण की रचनाओं में कहीं गहरी निराशा है तो कहीं वैसी ही पुष्ट आस्था और भक्ति, वेदांत की ध्वनि बार बार गूंजती ही। जिधर देखिए श्याम विराजे, श्याम कुंजवन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन वारिद गाजे। इसी क्रम में आगे कवि का सूक्ष्म पर्यवेक्षण है, श्रुति के अक्षर श्याम देखिए दीप शिखा पर श्याम निवाजे। वेद तो मौखिक परंपरा में है, पर लिखे जाने पर वे भी श्याम अक्षरों में हो आते हैं, यों सर्वत्र श्याम का विस्तार है। निराला के दीर्घ काव्य विकास में अगली रचना आंदोलनों प्रगतिवाद प्रयोगवाद और नई कविता के बीच मिल जाते हैं। उनके संकलन नए पत्ते से चलने वाले अंतिम दौर में इस प्रकार की अनेक कविताएं द्रष्टव्य हैं। आधुनिक काल में काव्य भाषा के आलाप से लेकर तराना तक वे स्वयं हैं। बाद के कुछ गीतों में सामान्य भाषिक अर्थ को परे करके निराला ने महाशब्दों और उनकी ध्वनियों को रचा है। ऐसे शास्त्रीय शैली के गायक अपने संगीत का समापन तराने के साथ करता है। समकालीन कविता में कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं पर निराला यहाँ भी अग्रणी है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, सिनवारी सिनवारी। इस क्रम का कुछ और विस्तृत विवेचन भले कुछ अनिवार्य पुनरावृत्ति के साथ अंतिम अध्याय उत्तर दृश्य के दूसरे खंड में होगा। निराला ने हर बड़े लेखक की तरह जहाँ कविता में अपने जीवन वृत्त को प्रमाणित किया है, वहीं अपने रचनाकाल में वे उत्तरोत्तर पुराने को काट कर नया लिखते गए हैं। यह कवि की रचना यात्रा का आखिरी पड़ाव है, जहाँ अपने अंतिम कविताओं में कवि ने भारतीय दर्शन के अनुकूल चक्रीय जीवन क्रम में आस्था व्यक्त की है। पुनः सवेरा एक और फेरा ही जी का।